इसी तरह अगला सबब जिसकी वजह से दुआएं कबूल नहीं होती वो क्या है? जानी की दुआ कबूल नहीं होती। अल्लाह अकबर। क्यों भाई? इसलिए कि जो अल्लाह का फरमा बरदार नहीं रहा, जिसने अल्लाह के हक में कमी की, वो तो काफिर हो गया, मुशरिक हो गया। और जिसने अपने कपल, बीवी या शौहर, या आने वाली बीवी या होने वाला शौहर, अगर अभी शादी नहीं, उसके हक में कमी कर दी ना किसी और को अपना जिस्म देके, तो अल्लाह ताला ऐसे बेवफाओं की और हरजाइयों की दुआएं कबूल नहीं करता। और इसी के साथ एक और, ज़बरदस्ती टैक्स वसूल करने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। अब टैक्स हम नहीं लेते, लेकिन आम आमतुन्नास में ये कि ज़बरदस्ती किसी से कोई माल ले लेना, ऐसे ही खामखा के सबब बना के, फ्रॉड्स करके। रिवायत आपके सामने रखती हूँ, तबरानी की सही रिवायत है, अबुल आस सकफी रसी अल्लाह तआला अन्हो से, नबी सल्लम ने फरमाया, रोज़ाना आधी रात के वक्त आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। महसूस किया आपने खुलने को? कभी आपको तो मौका मिले तो आधी रात को खुला आसमान के नीचे आके देखिए, कुछ नहीं तो अपनी विंडो का भारी पर्दा हटा के तो देखें। थिक कर्टन्स बाज़ दफ़ा रब से दूर कर देते हैं, वो फितरत के मनाजिर नहीं दिखते। तो फरमाया कि रात को दरवाज़ा खुलता है। फयुनादी मुनादिन, फिर एक पुकारने वाला फरिश्ता पुकारता है। कोई है दुआ करने वाला जिसकी दुआ कबूल की जाए? कोई सवाल करने वाला है जिसका सवाल पूरा किया जाए? कोई है मुसीबत ज़दा कि जो मुसीबत दूर करने की दुआ करे और उसकी दुआ कबूल की जाए? तीन पुकारें लग रही हैं। और उसके बाद आपने फरमाया, अल्लाह ताला हर बंदे की दुआ कबूल फरमाता है सिवाय जानिया के, जो अपनी शर्मगाह के ज़रिए गैर मर्द को सैराब करती है, और ज़बरदस्ती टैक्स वसूल करने वाले के। अल्लाह अकबर। इसी तरह एक और वजह जिसकी वजह से दुआएं कबूल नहीं होती, अमर बिल मारूफ यानी नेकी का हुक्म देना व नहीं अनिल मुनकर और बुरे कामों से रोकना। इस फ़र्ज़ को अदा न करने वालों की दुआएं कबूल नहीं की जाती। हम सबको तो इस दुआ को बड़े गौर से सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के दौर में एक रिवाज क्या हो गया, डोंट टॉक अबाउट रिलीजन, माइंड योर बिजनेस। अल्लाह ताला कहते हैं, जब तुम नेक लोगों को बुराइयों पे रोकोगे नहीं, नेकियों का हुक्म नहीं दोगे, तो मैं तुम्हारी दुआएं नहीं कबूल करूँगा। और हदीस के लफ्ज़ भी बड़े खूबसूरत हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से तिर्मिज़ी की हसन दर्जे की रिवायत है, नबी सल्लम ने फरमाया, तुम नेकी का हुक्म दोगे और बुराई से रोकोगे, वरना अन करीब अल्लाह ताला तुम पर अपनी तरफ से अज़ाब नाजिल कर देगा, फिर तुम इससे दुआ करोगे और वो तुम्हारी दुआ कबूल ना करेगा। अल्लाह अकबर। इसी तरह रिस्के हलाल ना खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है सही मुस्लिम में, अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला पाक है और पाक चीज़ के सिवा कोई चीज़ कबूल नहीं करता, और बेशक अल्लाह ताला ने मोमिनों को ऐसी चीज़ का हुक्म दिया है जिसका हुक्म रसूलों को दिया। चुनांचे इरशाद फरमाया, ए रसूलों, पाक चीज़ें खाओ और नेक अमल करो। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए लोगो जो ईमान लाए हो, खाओ इस पाक रिस्क से जो हमने तुमको दिया। फिर आपने एक शख्स का ज़िक्र किया जो तवील सफ़र करके गुबार आलूद परा गंदा बालों के साथ हज जिहाद के लिए आता है, दोनों हाथ आसमान की तरफ फैला कर कहता है, ए मेरे रब, ए मेरे रब, यानी दुआएं मांगता है, लेकिन हकीकत क्या है? इसका खाना हराम का, पीना और पहनना सब हराम माल से है, हराम से ही परवरिश किया गया। फिर ऐसे शख्स की दुआ कैसे कबूल की जाए? तो बात यही है कि रब तो देना चाहता है, लेकिन जो नहीं लेना चाहते, फिर उसकी वजह इंसान खुद अपने आप को देख सकता है कि हमने कहीं रब को नाराज़ तो नहीं किया हुआ, कहीं रब हमसे रूठा हुआ तो नहीं है। आज कितनी दुआएं होती हैं मस्जिदों में, हरम में, लेकिन क्या मुसलमानों की हालत बदली हुई दिखती है? लगता है कि आज वाकई अल्लाह ताला मोमिनों की दुआएं कबूल कर रहा है? वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो कह दें कि मैं करीब हूँ। उजीब दावत दाई इजादान, दुआ मांगने वाले की दुआ को कबूल करता हूँ जब भी वो मांगे। अब देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा जिनसे हम मांगते हैं ना, वो बैंक्स हैं। क्या हर वक्त खुले होते हैं? ये लफ्ज़ है ना इज़ा, जब भी मांगो, वन वेन एवर वट एवर, कोई वीकेंड नहीं, कोई सैटरडे संडे नहीं, कोई 9 to 5 की शर्त नहीं, कोई क्रिसमस ईस्टर की छुट्टी नहीं, जब भी मांगो है इतना अवेलेबल कोई और। फल यस्तजी भूली वल्यु मिनू भी लल्लहुम यर्शिदून। अबू दाऊद की एक रिवायत में आता है कि रोज़ेदार इफ्तार के वक्त जो दुआ करता है अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाता है। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक अमल आपके सामने रखूँगी। इफ्तार के वक्त अपने घर वालों और बच्चों को सबको बुला लेते और दुआएं करते। इससे क्या पता चलता है कि बच्चों से भी दुआ करानी चाहिए। अब देखिए कि जो हमारे दुआओं की कबूलियत के रास्ते में रुकावट है ना, वो हमारे गुनाह हैं। अपने गुनाह दूर करते जाएँ, तौबा करते जाएँ, अपनी ज़िंदगी का रुख बदलते जाएँ, लेकिन बच्चे मासूम होते हैं, उनसे दुआ कराने से फ़ायदा ये होगा कि बाद दफ़ा उनकी मासूमियत की वजह से दुआएं कबूल होंगी। यहाँ एक और छोटी सी चीज़ इशारा दूंगी कि बाद दफ़ा हम देखते हैं कि कोई फल यस्तजीबू ली वल्युमिनू भी इस पे अमल नहीं भी करता, उसकी ज़िंदगी सरासर अल्लाह के हुक्म से ख़िलाफ़ दिखती है, तो फिर अल्लाह ताला उसको भी तो देता है। वो दुआ करे ना करे, उसके घर में ऐश और तईश है, दुआ मांगता है तो भी कबूल होती है, तो फिर ये क्या बात है? क्या अल्लाह ताला गुनाहगारों की भी सुनता है? तो जी सुनता है, और सबसे बड़े गुनाहगार इबलीस की तो उसने सुन ली थी, जिसने ढील मांगी थी क़यामत तक। अल्लाह सुनता है, बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला गुनाहगार की भी सुनता है। क्यों? ताकि गुनाहों में मज़ीद बढ़ जाए। एक और दिलचस्प बात दुआओं के बारे में कहूँगी आपको कि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कोई एक हमारे पास आता है और कहता है जी बस दुआ करें हमारे लिए, कोई ज़िंदा इंसान है तो उससे दुआ कराई जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये गुमान रखना कि इसकी ज़रूर कबूल जाए की जाएगी, ये दुरुस्त नहीं है। और दूसरा किसी का ये कहना कि हमारी इसलिए नहीं कबूल होती कि हम बड़े गुनाहगार हैं, ये भी दुरुस्त नहीं है। क्योंकि आपने अभी रिवायत सुनी कि जब बंदा ये कहता है ना कि मेरी अल्लाह ताला सुनता नहीं, यानी हदीस में आता है कि अल्लाह ताला बंदे की दुआ कबूल करता है जब तक कि वो जल्दी ना करे, तो सहाबे कराम ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है जो दुआओं की कबूलियत में जल्दी ना चाहे? तो आपने फरमाया कि दुआ की कबूलियत में जल्दी करना क्या है कि कोई ये कह दे कि अल्लाह मेरी नहीं सुनता। कहीं कभी आपने तो नहीं ना समझी में मुँह से निकाल दिया कि अल्लाह मेरी नहीं सुनता? नहीं, तौबा इस्तग़फ़ार, ये कभी नहीं हो सकता। अगर ये कहा तो फरमाया फिर ऐसे बंदे की अल्लाह वाकई नहीं सुनेगा, नाराज़ हो जाएगा, रूठ जाएगा, नहीं तो फिर ना सही, मैं अब नहीं सुनूंगा तुम्हारी। तो इसलिए हम कभी कभी दूसरों से मंगवा सकते हैं, इसको आदत नहीं बना लेना चाहिए। और जहाँ देखा किसी को दीन का काम करते ये सोच लेना कि बस ये तो वलीउल्लाह हो गए और इनकी तो अल्लाह मोड़ता ही नहीं, ये झूठ है, ये धोखा है। अल्लाह ने नहीं मानी ना तो नबियों की भी नहीं मानी, और मानने पे आया तो शैतान की भी मान ली, ये उसके हाथ में। कभी गलत फहमी से भी ये ना कहिए किसी बुज़ुर्ग के बारे में, किसी इंसान के बारे में कि अल्लाह ताला इनकी ज़रूर सुनता है, उसकी मर्ज़ी है जिसकी सुने ना सुने। हाँ ए अल्लाह, मुझे पता है मैं तुझसे मांग के कभी महरूम नहीं रही, अपने बारे में ये यकीन रखे। कभी कभी कोई आता है और कहता है मेरे लिए दुआ करें, यानी कोई शख्स किसी दूसरे को कहता है मेरे लिए दुआ करो, अब उस शख्स ने हाथ उठा दिए, अल्लाह ताला इसकी दुआ कबूल कर ले। अब होता क्या, अल्लाह ताला उस गैब के लिए दुआ करने वाले को कहता है, अच्छा तूने मांगी, अच्छी नहीं थी, उसको अजर दे देता है, चलो जाओ तुम्हें अजर दे दिया। लेकिन अब अल्लाह ताला उस बंदे की तरफ रुजू करते हैं कि जिसके हक में दुआ मंगवाई जा रही है, वजह क्या है उस पे वो बीमारी आने की, इसकी इसकी वजह क्या है? हो सकता है किसी गुनाह की सज़ा होती है जिसकी वजह से अल्लाह ताला उसकी अभी हालत नहीं बदलना चाहते। आपने गैब के लिए दुआ की, आपको अजर मिल गया, अब उसकी नहीं पूरी हो रही, ये उसका रब का मामला है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी डॉक्टर के पास कोई आए और कहे पेट में दर्द है, बहुत दर्द है, लेकिन ये ना बताए कि वजह क्या है, कि मैंने कच्ची रोटी खा ली थी या मैंने ज़्यादा खा लिया था, वजह ना बताए। तो वजह जाने बगैर कोई डॉक्टर अगर इलाज शुरू कर दे, यही सूरत है जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं लेकिन हमें नहीं पता कि गैब के पर्दों में क्या हो रहा है। तो लिहाजा इंसान जैसा भी गुमान करे, लेकिन अल्लाह ताला की बातें सच हैं। फिर इसी तरह आप देखिए, एक बड़ी प्यारी दुआ एक सहाबी ने मांगी थी। इब्ने माजा की रिवायत है कि एक सहाबी ने ये दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिरहमतिकल्लती वसेअत कुल्ल शैइन अन तग़फिर ली। ए अल्लाह, मैं तेरी इस रहमत को तुझे याद दिलाकर जिसने तमाम चीज़ों को घेर रखा है तुझसे दुआ दुआ करता हूँ। क्या? अन तग़फिर ली, कि मुझे माफ़ कर दे। अब देखिए, बंदा मोमिन के दिल को लगा बस सबसे बड़ा धड़का क्या है, मुझे माफ़ कर दे अल्लाह ताला। हम अपनी दुआओं के आईने में अपनी हालत को देख सकते हैं, हमारा क्या मामला है, क्या वाकई हम आखिरत का गम लगाए बैठे हैं दिलों में कि नहीं। एक दफ़ा मदीना में कुछ लोग थे, सब ने नियत की कि हम मिल के नबी सल्लम के पास जाते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि पानी की बड़ी कमी है, तो आप अल्लाह के नबी हैं, आप दुआ कर दें कि पानी आ जाए, ताकि हमारे ग़ुलामों को और बहुत दूर से जाके पानी लाना पड़ता है तो मुश्किल आसान हो जाए। तो चंद साथी थे, वो सब मिल के आए तो नबी सल्लम के पास आए। अब अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए अपने नबी को पहले से बता दिया कि ये कुछ मांगने आ रहे हैं, आज कोई नियत लेके आए हैं। तो इससे पहले कि वो नबी सल्लम से कुछ कहते, अल्लाह के नबी सल्लम ने खुद ही पूछ लिया, चलो साथियों आज तुम जो मांगोगे इंशाल्लाह तुम्हारी वो दुआ कबूल होगी। अल्लाह अकबर, इतनी सी बात सुन के अपने नबी की ज़ुबान से सोच में पड़ गए, अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मांगेंगे मिलेगा, हाँ जो मांगेंगे मिलेगा, कहने लगे कि हमें सोचने का मौका दें, फिर हम क्या मांगें? ज़रा सोचें, अगर हम होते तो फ़ौरन फट ना पड़ते, हाँ हम तो आए ही आज मांगने थे, ये भी दे दें वो भी दे दें। सोच में पड़ गए, घर में गए, रात को सोचते रहे क्या मांगे क्या मांगे, और आपको पता है अगले दिन आए तो क्या मांगा? कहने लगे अल्लाह के नबी, अल्लाह से दुआ करें कि हमें जन्नत में आपका साथ मिल जाए। और एक रिवायत में आता है कि ये मशवरा उनको एक बच्चे ने दिया था, यानी ये वो दौर है कि जहाँ का बच्चा बच्चा इतना ज़्यादा एजुकेटेड था, इतना अल्लाह और उसके नबी की मोहब्बतों का प्यासा था। तो बात यही है कि जब बंदा रब से मांगता है तो रब देता है, लेकिन बाज़ दफ़ा ना देने में खैर है और बाज़ दफ़ा देने में नुकसान होता है। इसलिए रब को क्या कहना है, अल्लाह मेरे हक में जो बेहतर है वो दे, जो बेहतर नहीं है और मैं मांग रही हूँ तो बेहतर करके दे दे। और बंदा रब की तरफ आता है, रब उसकी तरफ आता है, इसलिए कि वो करीब है। सही बुखारी की रिवायत है हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, और यह हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी क्या होती है कि लफ्ज़ भी अल्लाह तआला के होते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब बंदा मेरी तरफ एक बालिश्त करीब होता है, यानी वन हैंड, और आपको पता है कि अरबी में हाथ कहाँ तक होता है, उंगलियों से लेके कोहनी तक, तकरीबन 1 फुट से ज़्यादा बनता है। जब बंदा मेरी तरफ एक बालिश्त करीब होता है तो मैं इसकी तरफ एक ज़रा करीब हो जाता हूँ, और जब वो मेरी तरफ एक हाथ करीब होता है तो मैं इसकी तरफ 2 हाथ करीब हो जाता हूँ, और जब वो मेरी तरफ चलता हुआ आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता हूँ। ये है कदरदान रब, सबको दे दे कमी ना आए, सब भूखों को खिला दे कुछ कमी ना आए, लेकिन मांगने में कमी है। आखिर में एक रिवायत सुनाऊंगी आपको इस मौजू की। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, और ये भी हदीस कुदसी है। اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، بس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ پھر اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے ان کے جن کو میں ہدایت سے نوازوں، بس تم مجھ سے ہی ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ ہدایت کی دعا مانگنی ہے، کون سی؟ جو روز سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں؟ نہیں، تڑپ کے، طلب کے۔ دل چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں سے، پتہ ہی نہیں مانگا کیا تو ملے گا بھی کیسے۔ تیسری چیز، اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے ان کے جن کو میں کھانا عطا کروں، بس تم مجھ سے ہی کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ پھر اے میرے بندو، تم سب برہنا ہو یعنی نیکٹ ہو سوائے ان کے جن کو میں پوشاک پہنا دوں، بس تم مجھ سے ہی لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، بس تم مجھ سے ہی مغفرت اور بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم میرے نقصان کو نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے نقصان پہنچا دو، اور تم میرے نفع کو نہیں پہنچ سکتے کہ مجھے نفع دو، یعنی تم مجھے نفع اور نقصان نہیں دے سکتے۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر، تمہارے انسان اور جنات سب اس شخص کی طرح ہو جائیں جس کے دل میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہے، تو یہ بات میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں کرتی۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا چناؤ کوئی ووٹوں پہ نہیں ہوا کہ سب لوگ نیک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی کرسی مضبوط ہوگی، ایسا نہیں ہے، اور نہ اس کے اپوزٹ ہے۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر، پہلے یا آخری، تمہارے انسان اور جنات اس شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ فاجر اور فاسق ہے، یعنی اگر سارے ہی خراب ہو جاؤ، تو یہ چیز میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں کرتی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے، انس اور جن سب ایک کھلے میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں، اور میں ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں، تو اس سے میرے خزانوں میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی کمی سمندر میں سوئی کو ڈال کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے، یعنی بالکل کمی نہیں ہوتی۔ اے میرے بندو، یقیناً تمہارے اعمال ہیں جن کو میں تمہارے لیے گن گن کر رکھ رہا ہوں۔ سوچئے ذرا، میرا ہر عمل میرے رب کے پاس پہنچتا ہے اور اس کو گن کے رکھ رہا ہے، کیوں؟ پھر میں تمہیں پورا بدلہ دیتا ہوں، بس جو بھلائی پائے وہ اللہ کی تعریف کرے، اور جو اس کے علاوہ پائے اس کو اپنے نفس کو ملامت کرے۔ سید بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ جب یہ حدیث بیان کرتے تو اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑتے، خشیت کی وجہ سے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، پتہ نہیں ہمارے دل میں کوئی خشیت آتی بھی ان آیتوں کو سن کے کہ نہیں۔ میں نے کیوں سنائی یہ آخر میں حدیث؟ کیونکہ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، اللہ میرے حصے کی عمر کسی اور کو دے دے، میری عمر میرے بچے کو دے دے۔ پھر کیوں؟ اس کے پاس کمی ہے؟ آپ کیوں کہتے ہیں یہ بات؟ اب یہ کیوں نہیں کہتے اللہ اس کو بھی دے اور مجھے بھی دے؟ یہ ایگزیجریشن ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اچھا کسی کی آتی تجھ کو آ جائے، میری آتی اس کو آ جائے۔ نہیں، جس کی جس کو آئے گی اسی کو آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمت کرے اور اس قابل کر دے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کر سکے اور ہماری کمیوں بیشیوں کو دور کر کے صحیح معنوں میں ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جو مستجاب الدعوات ہے، جو جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ یاد رکھیے، رب ہماری سنے، اس سے پہلے ہمیں رب کی سننی پڑے گی۔ ہمیں رب وہ دے جو ہم چاہتے ہیں، تو ہمیں وہ کرنا پڑے گا جو رب چاہتا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ کبھی یہ شعر مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، اب آ گیا الحمدللہ، کہ زندگی بھر بندہ رب سے پوچھ پوچھ کے چلتا رہے۔ अल्लाह तू बता मैं क्या करूं, किसी से ना पूछे इतनी अना, अपने रब के साथ इतना मामला, गम है या खुशी किसी को खबर ना होने दे, रब की शिकायतें ना लगाए, रब के शिकवे ना करे, तो कल अल्लाह ताला उसको कहेगा सबको तो जन्नत मैंने अपनी पसंद से दी लेकिन तुझे चॉइस देता हूँ कि तू बता कि तू कौन सी जन्नत में जाना चाहता है, तुझे फिरदौस चाहिए, तुझे जन्ना चाहिए, तुझे मावा चाहिए, तुझे हरीर चाहिए कि रेशम चाहिए, तुझे क्या चाहिए तू मुझे बता, मैं तुझे देने को तैयार हूँ। तू सोने और चांदी के कंगन पहनना चाहता है या तस्नीम के झरोखों से पानी पीना चाहता है, जो मांगेगा मैं दूंगा, अल्लाह ताला हमें अपने साथ जोड़ दे।
सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.